अगला शीर्षक है रामचंद्रिका में महाकाव्यत्व, और इसे लिखा है डॉक्टर जगन्नाथ तिवारी ने। महाकाव्यत्व की दृष्टि से रामचंद्रिका में केशव को कहाँ तक सफलता मिली है, इस प्रश्न पर विचार करने के पहले हमें यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने महाकाव्य की कौन कौन सी विशेषता बतलाई है और संस्कृत के महाकाव्यों में उनका कहाँ तक पालन हुआ है। केशव के सामने संस्कृत साहित्य के लक्षण तथा लक्ष्य दोनों प्रकार के ग्रंथ मौजूद थे और उन्हीं के अनुसार केशव ने अपनी रामचंद्रिका की रचना भी की। किसी कवि की आलोचना करते समय हमें इस बात को कभी ना भूलना चाहिए कि उस कवि के ऊपर किन किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है और उसने किस दृष्टिकोण से अपने ग्रंथ की रचना की है। अपने बनाए हुए आलोचना के नियमों की अनुचित कसौटी पर किसी प्राचीन महान कवि को कसकर उसे असफल बताना उचित नहीं। काव्य दर्श, साहित्य दर्पण इत्यादि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों में महाकाव्य के जो लक्षण दिए हैं उनका सारांश यह है। महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए और इसकी कथा का ऐतिहासिक आधार होना चाहिए। इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। इसका नायक देवता या धीरोदात्त क्षत्रिय होना चाहिए अथवा इसमें एक उच्च वंश के अनेक राजाओं का वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य में पूरा विस्तार होना चाहिए और इसमें कम से कम 8 सर्गों का होना आवश्यक है। प्रत्येक सर्ग में सामान्यतया एक ही छंद होना चाहिए, किंतु अंत में छंद का बदलना आवश्यक है। किसी किसी सर्ग में अनेक बदलते हुए छंदों का भी प्रयोग हो सकता है। महाकाव्य के लिए प्रचुर वर्णनों से अलंकृत होना आवश्यक है। उसमें नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्रोदय, सूर्योदय, उद्यान, कीड़ा, ललित कीड़ा, सलील क्रीड़ा, मंत्रणा, रैप, पर्याण, नाटक, कभ्युदय इत्यादि का सुंदर वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार, वीर तथा शांत में से कोई एक हो सकता है। अंत में महाकाव्य की शैली अत्यंत अलंकृत तथा रसभावपूर्ण होनी चाहिए। इसके अनंतर यदि हम संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय, शिशुपालन, शिशुपालवध, नैषध चरित्र इत्यादि पर दृष्टि डालते हैं तो इनमें भी इन्हीं उपर्युक्त नियमों का पूर्ण रूप से अथवा विशेष रूप से अनुसरण पाते हैं। केशव के सामने ये दोनों प्रकार के लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ मौजूद थे और वे इन नियमों से पूर्ण परिचित थे। रामचंद्रिका में इन सब नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। इसी की कथा का आधार वाल्मीकि रामायण है। राम जैसे धीरोदात्त मर्यादा पुरुषोत्तम इसके नायक हैं। इसमें 8 से अधिक सर्ग भी है जिसका नाम केशव ने प्रकाश रखा है। इसका आकार संक्षिप्त नहीं है। छंदों के प्रयोग में अवश्य केशव ने अधिक स्वतंत्रता से काम लिया है और अनेक छंदों का प्रयोग किया है। छंदों की विविधता के कारण रामचंद्रिका में कोई त्रुटि नहीं आने पाई है। प्रत्युत एक अपूर्व सौंदर्य आ गया है और पद पद पर नूतनता का अनुभव होता है। रामचंद्रिका में फड़कते हुए वर्णनों का भरमार है। वाटिका वर्णन, सूर्योदय वर्णन, शरद वर्णन, त्रिवेणी वर्णन, भारद्वाजाश्रम वर्णन, युद्ध वर्णन इत्यादि वर्णनों से रामचंद्रिका भरी पड़ी है। रामचंद्रिका में श्रृंगार, वीर और शांत तीनों रस मिलते हैं और इनका सुंदर परिपाक्य हुआ है। जितनी चमत्कारपूर्ण अलंकृत योजना रामचंद्रिका में दिखाई पड़ती है उतनी हिंदी के अन्य महाकाव्यों में नहीं। रसों और महाभावों से सारा ग्रंथ भरा पड़ा है। सारांश यह है कि महाकाव्य की दृष्टि से रामचंद्रिका केशव की एक उत्कृष्ट कलापूर्ण रचना है। कतिपय आधुनिक आलोचकों द्वारा रामचंद्रिका में महाकाव्य की दृष्टि से कुछ त्रुटियां बतलाई गई हैं, उन पर भी अब थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। कहा गया है कि महाकाव्य के प्रबंधत्व के लिए कथानक की जंजीर में सब कड़ियों का स्पष्ट दर्शन होना चाहिए और रामचंद्रिका में इस बात का अभाव है। इसके उत्तर में केवल इतना ही निवेदन किया जा सकता है कि महाकाव्य जीवन चरित्र या इतिहास नहीं है जिसमें कथानक के सब विवरणों का होना आवश्यक है। कवि उन्हीं स्थलों को चुन लेता है जिनमें उसकी वृत्ति रमती है और उन्हीं का क्रमिक वर्णन करता है और इसी क्रमिक वर्णन से प्रबंधत्व स्वयं आ जाता है। रामचंद्रिका में केशव ने भी इस अधिकार का उपयोग किया है, अतः उनके ऊपर प्रबंधा भाव का दोष लगाना उचित नहीं। दूसरी बात यह है कि रामकथा जनता के हृदय में इस दृढ़ता से बदमूल है। यदि कोई रामकाव्य में कुछ विवरणों को छोड़ भी दे तो इससे कोई हानि नहीं होती। पाठक स्वयं संबंध जोड़ लेता है। कुछ आलोचकों का कथन है कि संवाद की अधिकता के कारण भी रामचंद्रिका की प्रबंध धारा रुकती सी दिखलाई देती है। यह कथन तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई कहे कि किनारे पर स्थित मनोहर वृक्षों के कारण नदी की धारा में रुकावट आ जाती है। मेरी समझ में तो फड़कते हुए सजीव संवादों के द्वारा रामचंद्रिका की प्रबल धारा में एक अपूर्व मनोहरता सी आ जाती है, उसमें रुकावट नहीं आ पाती।